I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him.
श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और मैं सबके प्रति समान भावना रखता हूं, लेकिन जो कोई मेरे प्रति भक्ति से सेवा करता है वो मेरा मित्र है, वो मेरे में है और मैं भी उसका मित्र हूं.
This wonderful verse from the 9th chapter of Bhagavad Gita reveals the most confidential of all knowledge.
ये नौवें अध्याय से ये श्लोक है, ये सबसे गुह्य ज्ञान समझाता है.
Krishna, who is the absolute truth, is the seed-giving father of all living beings.
Krishna जो है परम तत्व हैं और वो सबके बीज दाता पिता हैं.
अहम बीज प्रदा पिता. Therefore, all living beings being his parts and parcels, he perceives them all equally.
और सब जीव उसके अंश होने के नाते वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं.
But yet, although he is partial to no one, he becomes the beloved friend of his devotee.
फिर भी वो अपने भक्त के प्रति जो है प्रिय मित्र बन जाते हैं.
How can one be simultaneously partial and impartial?
ऐसे कैसे हो सकता है कि व्यक्ति जो है समान भावना रखे और फिर भी विशेष जो है कृपा दिखाए?
Even Yudhisthira Maharaj was perplexed with this question when he inquired from Narada Muni.
युधिष्ठिर महाराज भी इस प्रश्न से मोहित हो गए थे और उन्होंने नारद मुनि से पूछा.
How is it that the Supreme Lord killed Hiranyakashipu and bestowed his choicest blessings upon Prahlad if he is impartial to all?
अगर भगवान सबके प्रति समान भावना रखते हैं तो ऐसे कैसे है कि हिरण्यकश्यपु को जो है उन्होंने वध किया और प्रहलाद के प्रति जो है प्रेम भावना दिखलाई?
This is explained in this verse of the Gita.
वो गीता के इस श्लोक में समझाया गया है.
Krishna says, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मानुष्य पारतसारकश. That as one approach me, I reward that person accordingly.
कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो जिस भावना से मेरी समर्पण में आता है मैं उसको वैसे ही इनाम देता हूँ.
When Krishna appeared on this earth, he was born in Mathura.
जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर प्रकट हुए तो वो मथुरा में जन्म लिया.
And then he spent approximately 12 and a half years living as a cowherd boy in Vrindavan.
और उन्होंने करीब 12.5 साल जो है एक ग्वाले के रूप में वृंदावन में बिताए.
There he performed his most beautiful, sweet and loving pastimes in order to attract all the world to his loving service.
और पूरे विश्व को अपनी प्रेममय सेवा के प्रति आकर्षित करने के लिए उन्होंने बहुत सुंदर लीला दिखाई.
He was then called to Mathura.
उसके बाद उनको मथुरा बुलाया गया.
He came with Balaram and some of his friends.
बलराम जी और कुछ मित्रों के साथ वो मथुरा पहुंचे.
At the time, Krishna was just a child.
और उस समय कृष्ण जो है एक बालक ही थे.
It is explained that although he was only 12 and a half years old, he looked like about 15.
ऐसा बताया जाता है कि हालांकि वो 12.5 वर्ष के थे, वो 15 वर्ष के प्रतीत हो रहे थे.
Because his mother Yashoda would give him the best milk from the best cows of all of Braja.
क्योंकि यशोदा माता जो है उनको ब्रज के सब गायों के सर्वश्रेष्ठ गायों से सर्वश्रेष्ठ दूध पिलाते थे.
But we should know that Krishna is the Parameshwara.
हमें मालूम है कि कृष्ण जो है परमेश्वर हैं.
As Lord Brahma has explained, Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. That Krishna has an eternal body which is full of knowledge, full of bliss. He is the supreme of all lords, and he is the controller of everything that exists, and he is the cause and the source of everything.
जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान जो है सत्य यानी पूर्ण सत्य जो यानी कि हमेशा रहने वाले चित यानी ज्ञान से पूर्ण और आनंद से पूर्ण है और वो सब कारणों के कारण है और वही परमेश्वर है.
According to the shastras and all the great acharyas, that beautiful child Krishna is the original form of the absolute truth, which has its supreme abode in the spiritual sky.
शास्त्रों के अनुसार वो जो बालक हैं, वो श्री कृष्ण हैं, जिनका कि नित्य धाम आध्यात्मिक जगत में है.
But he descends into this world out of his love and compassion for all those who have forgotten him.
लेकिन वो इस धरती पर अवतरित होते हैं सब जीवों को अपना प्रेम और करुणा दिखलाने के लिए.
To perform such wonderful and beautiful lila that everyone whose hearts are sincere will become enchanted and surrender to him with love.
और ऐसी सुंदर लीला करने के लिए कि जो भी उन लीलाओं को सुनेगा वो उनके प्रति आकर्षित हो जाएगा.
When Krishna entered into Mathura, the inhabitants greeted him by showering him with flowers.
जब कृष्ण जो है मथुरा में प्रकट हुए तो फूलों से उनका स्वागत किया गया.
Krishna came to the house of one washerman.
और वहां पर वो एक धोबी के घर में आए.
And he saw all the nice cloth that was there.
और वहां पर उनके कपड़े को देखा.
And he said, "Please, washerman, I would like to take the best of your cloth."
और वो धोबी से बोले कि मैं आपके सर्वोत्तम कपड़ों को ग्रहण करना चाहता हूँ.
And if you give it to me, I will give you all blessings and good fortune.
और अगर आप मुझे ये देंगे तो मैं सब आशीर्वाद और अच्छे भाग्य आपको प्रदान करूंगा.
We should know that Krishna was neither a beggar nor was he in need of clothes.
हमें जानना चाहिए कि कृष्ण एक भिखारी नहीं थे और न ही वो कपड़े की जो है जरूरत में थे.
Krishna is the proprietor of everything that exists.
कृष्ण जो है सब चीजों के मालिक हैं.
भोक्तराम जगतापसम सर्वलोकमहेश्वरम. Krishna says that I am the proprietor of everything. And everything is ultimately meant to be utilized in my enjoyment for my service.
Krishna bolte hain ki main sab cheezon ka bhokta hu aur sab cheez jo hai wo mere aanand ke liye hai.
So Krishna was simply giving this washerman the supreme opportunity of perfecting his life by offering with the best he had to the Lord.
Aur isliye jo hai Krishna ek avsar de rahe the wo dhobi ko ki jo sarvottam cheez hai wo unko arpan karne ke liye aur jeevan ki purnata prapt karne ke liye.
But this washerman was an associate of Kamsa.
लेकिन ये धोबी जो है वो कंस का संग करता था.
Who was a great asura.
जो कि एक बहुत बड़ा असुर था.
And according to the association we keep, our consciousness is either uplifted or degraded.
जैसा हम संग करते हैं उसके अनुसार हमारी चेतना या तो उत्थान करती है या पतन करती है.
The most important principle in a human being's life is who that person associates with.
मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि व्यक्ति कैसा संग करता है.
If we associate with sadhus or saintly devotees, naturally we become inclined to the loving service of the Lord and perfect our lives.
अगर हम साधुओं का संग करेंगे तो स्वभावतः हम जो है अपने जीवन को सफल करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे.
असाद संग त्याग अवैष्णवाचार. But if we associate with people too much materialistic, too much engaged in sinful activities, who do not have strong faith in the grace of God, then our consciousness becomes materialistic, selfish, and even sinful.
अगर हम ऐसे लोगों का संग करते हैं बहुत ज्यादा जो भौतिकवादी हैं तो हमारी चेतना भी भौतिकवादी और पापी बन जाती है.
Lord Chaitanya Mahaprabhu has said, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Sastra Koi. Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Koi. That even a moment's association with a true sadhu, one can attain the perfection of liberation.
Chaitanya Mahaprabhu batate hain ki ek sachche sadhu ka ek kshan ka bhi sang mil jaye to woh jeevan ki siddhi ko prapt kar sakta hai.
But who is a real sadhu?
Lekin sachcha sadhu kaun hai?
A sadhu is not judged by hairstyle or dress.
वस्त्र से या बालों से हम साधु को नहीं पहचान सकते.
A sadhu is judged by the quality of his actions and his words.
वो अपने कार्यों और वचनों के द्वारा पहचाना जाता है.
तथिक्षवा करुणा का सुहृद सार्वभूतनम अजात सत्र वसंत सार्व साधु भूषण. One whose every act and every word is for the benefit of others in the service of God, who is always immersed in hearing and chanting the glories of the Lord, that person, his association is the most valuable and priceless gift in all of creation.
जो व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा है, जो दूसरे के कल्याणकारी के लिए हर कार्य और वचन को करता है, उस व्यक्ति का संग जो है बहुत ही मूल्यवान है.
महात्सेवम द्वारम अहुरव मुक्तेस तमो द्वारम योषित सांगी सांगम. By hearing and serving such mahatmas, the doors to liberation are opened in our life.
ऐसे महात्माओं की सेवा करने से और श्रवण करने से मुक्ति के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं.
तमो द्वारम योषित सांगी सांगम. But those who are too much attached to material enjoyment, false prestige, and such activities in reference to that, the doors to the lowest grades of ignorance are open wide.
और ऐसे लोगों का संग करने से जो कि भौतिक जीवन में बहुत आसक्त हैं, पाप जीवन में लगे हैं, उसको करने से हमारा पतन के दरवाजे बिल्कुल खुल जाते हैं.
We have seen, especially in the lives of children,
विशेष करके हम बच्चों के जीवन में देखते हैं,
if they associate with divine souls, good people, they naturally become divine.
अगर वो अच्छे लोगों का, दिव्य लोगों का संग करते हैं तो वो भी दिव्य बन जाते हैं.
And if they associate with other children who are addicted to degraded sinful habits, they become sinful.
और अगर वो पापी लोगों का संग करते हैं तो वो भी पापी बन जाते हैं.
But spiritually we are all children.
लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हम सब बालक ही हैं.
So we all require desperately, more than anything else in life, this type of saintly association.
और इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि इस तरह का सत्संग हमें प्राप्त हो.
Then it becomes natural to receive the grace of God.
और फिर स्वाभाविक हो जाता है कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है.
Otherwise, even when the grace comes before us, we cannot recognize it.
नहीं तो भगवान की कृपा सामने भी प्रकट होती है, हम उसको पहचान नहीं पाते.
Krishna was giving this washerman the opportunity to achieve the goal that even great yogis and sages strive for, performing lifetimes of tapasya.
कृष्ण भगवान उस धोबी को यह अवसर दे रहे थे उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए योगी जो है कई साल जो है तपस्या के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं.
The great gyanis who sit in their educational ashrams studying the shastra birth after birth after birth, the yogis performing tapasya, meditation, asanas, fasting for births and births and births, the bhaktas who perform devotional service life after life, they are all striving for one perfection.
तो जो इतने योगी हैं जो कि कई साल ऐसे तपस्या कई जन्म तक करते रहते हैं, कई ज्ञानी हैं जो कि कई शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, और कोई भक्त जो हैं वो भक्ति का अभ्यास कई जन्म तक करते रहते हैं, उनका एक ही उद्देश्य है.
It's like a translating tape recording machine.
ये बोल रहे हैं कि मैं एक ट्रांसलेटिंग टेप रिकॉर्डर मशीन हूं.
Speak in it English and play back, it comes Hindi. Ah. Krishna explains in the 7th chapter of Gita. Bahunam janmanamante jnanavam mampapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlaba. After many births and deaths of following the various religious processes, when one finally comes to the point of real knowledge, he surrenders to Vasudeva Krishna, knowing him to be the all in all, and the cause of all causes, and all that is.
Shri Krishna Bhagwan batate hain ki kai janmo ke baad, jo gyani purush ya gyan arjan karne ke baad, is nishkarsh par pahunchte hain ki Vasudeva Krishna jo hai, wahi sab kuch hai, wahi sab karanon ke karan hai, aur phir wo unki sharan mein aate hain.
The object of everyone's meditation and bhakti was standing right before the washerman saying, please, give me these clothes.
वो सबके भक्ति के जो विषय हैं वो उनके सामने खड़े थे और वो यही कह रहे थे कि कृपया मुझे ये कपड़े दे दीजिए.
But because his consciousness was spoiled by materialistic association, he became, rather than humble, angry.
लेकिन चूंकि उसकी जो चेतना है वो भौतिक संघ से दूषित हो चुकी थी इसीलिए वो क्रोधित हो उठे.
He was furious.
वो बहुत गर्म हो गए.
He said, "How dare you ask for these clothes?"
तो बोलने लगे कि तुम्हारी एक ऐसी हैसियत है कि तुम ये कपड़े मांग रहे हो.
They are the property of Kamsa, the king.
ये तो राजा कंस की संपत्ति है.
For asking this, you will certainly be punished.
और ये मांगने के लिए तुम्हें सजा दी जाएगी.
What right does a child ask for the clothes of the king?
ये एक छोटे बच्चे की क्या हैसियत है कि वो राजा के कपड़े मांगे.
So Krishna, being so unlimitedly merciful, he wanted to give this person some blessing, some way.
Krishna जो है वो अनंत कृपालु होने के नाते उसको कोई ना कोई आशीर्वाद देना ही चाहते थे.
He had the opportunity to perfect his life.
उनके पास एक अवसर था कि अपने जीवन को परम सिद्ध करने के लिए.
But he refused.
लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया.
So Krishna took his hand.
कृष्ण ने अपना हाथ लिया.
And he gently touched the neck of the washerman.
और हल्के से उसके जो गर्दन को स्पर्श किया.
And his head came off.
और उसका सर जो धड़ से अलग हो गया.
And fell to the ground.
और जमीन पर गिर पड़ा.
And the washerman was dead.
और इस तरह से धोबी मर गया.
Now you may ask, what kind of mercy is that?
अब आप कहेंगे कि ये कैसी कृपा हो गई.
Because when Krishna kills, that soul is liberated from the clutches of all material bondage.
क्योंकि जब कृष्ण किसी को मारते हैं तो वो आत्मा जो है सारे भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाती है.
And then Krishna took the clothes.
और फिर कृष्ण ने सारे कपड़े ले लिए.
And they went to a tailor.
और फिर वो एक दर्जी के पास गए.
And this tailor came out and he said, "My dear Lord, how can I serve you?"
और वो दर्जी बाहर आकर हाथ जोड़ते हुए बोला कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ.
He said, "Make these clothes fit us."
उन्होंने कहा कि ये कपड़े जो है हमारे लिए बना दीजिए.
So he very nicely arranged.
तो उसने इस तरह से अच्छी तरह से सेवा की.
And Krishna put on the best clothes and distributed to Balaram and friends, and they became very happy.
और कृष्ण ने जो है बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए और बलराम जी और दोस्तों सबको दिए और वो सब बड़े प्रसन्न हो गए.
And Krishna told the tailor that I give you the blessing that in this life whatever you desire will be fulfilled.
और भगवान ने दर्जी को ये आशीर्वाद दिया कि इस जीवन में जो भी आपकी अभिलाषा होगी वो पूर्ण हो जाएगी.
And after you leave this body, your soul will attain Vaikuntha.
और ये शरीर छोड़ने के बाद आपकी आत्मा वैकुंठ प्राप्त करेगी.
You will be engaged in my eternal loving service.
और वहां पर आप मेरी नित्य सेवा में लगे रहेंगे.
The perfection of life.
यही जीवन की पूर्णता है.
And then Krishna walked along the road and came to the home of a florist.
और फिर भगवान एक माली के घर में पहुंचे.
His name was Sudama.
उसका नाम सुदामा था.
And Sudama came out of his home, and when he saw Krishna, he fell on the ground to offer his dandavat pranam.
और सुदामा जो है बाहर आया और कृष्ण को देखकर उसने दंडवत प्रणाम किया.
And he got up with such humility and devotion and said, "My dear Lord, how can I serve you? How can I please you?"
वो अत्यंत नम्रता और भक्ति से भगवान से बोलने लगा, हे भगवान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, वो कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ.
And then he brought Krishna into his home and he made the two nicest, most exquisite garlands and placed them around Krishna and Balaram.
और वो अपने उनको दोनों को घर में ले गया और बहुत दो सुंदर मालाएं जो है कृष्ण और बलराम को अर्पण किए.
And Krishna was so satisfied by his humility and devotion because he offered the best thing he had to the Lord.
भगवान उनकी भक्ति से क्यों बहुत संतुष्ट हुए, क्योंकि उसने जो सर्वोत्तम चीज थी वो भगवान को अर्पण कर दी.
And he said, "Sudama, I will give you any benediction, whatever you like, I will fulfill your desire."
और उन्होंने ऐसे कहा, सुदामा, तुम्हें जो आशीर्वाद चाहिए हो मांग लो, मैं वो तुम्हें निश्चित दे दूंगा.
And Sudama replied, "My Lord, please grant me only one blessing."
सुदामा ने कहा, हे भगवान, मुझे सिर्फ एक ही आशीर्वाद दीजिए.
Allow me to be engaged eternally as your servant. Allow me to worship you with love.
मुझे जो है नित्य रूप से जो है आपका सेवक का अवसर दीजिए और मुझे प्रेम से जो है आपकी आराधना करने का अवसर दीजिए.
And through the service that I eternally offer to you, let me live my life for the benefit of all living beings.
और इस सेवा के द्वारा मैं अपना जीवन जो है दूसरों के कल्याणार्थ बिताऊं.
You see, great devotees of the Lord, they have no selfish desires.
जो भगवान के महान भक्त होते हैं उनकी कोई स्वार्थ इच्छा नहीं होती.
They are actually compassionate to everyone.
वो हर एक जीव पर जो है दया करते हैं.
They don't want to love Krishna alone.
वो ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ अकेले ही कृष्ण से प्रेम करें.
They want to see everyone taste the ultimate sweetness of pure bhakti.
वो ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति शुद्ध भक्ति के रस का आनंद ले.
They want to help relieve all living beings from the distress of this material world.
वो चाहते हैं कि सारे जीवात्मा जो है इस दुनिया के दुखों से मुक्त हो जाएं.
And in this world, who can deny it is a place of such great distress?
और ये बात को कौन जो है मना कर सकता है कि ये दुनिया दुखालय है.
कृष्ण एक्सप्लेन्स दुखलायम अशाश्वतम दैट इट इज अ प्लेस ऑफ मिजरी इट इज अ प्लेस वेयर अल्टीमेटली एवरीथिंग कॉम्युनेट्स इन ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ.
कृष्ण भगवान बताते हैं कि ये दुखालय है और अंत में सब चीज जो है बीमारी में बुढ़ापे में और मृत्यु में अंत हो जाता है.
राइट हियर इन महाराष्ट्र आवर ओन अबोड. What types of miseries are all around us?
अभी यही महाराष्ट्र का जो राज्य है इसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे दुख प्रकट हो रहे हैं.
Just within the last year or so, terrible earthquakes.
करीब जो है एक साल के पहले जो है बहुत भयंकर भूकंप आया था.
Floods.
और बाढ़ आई.
Drought.
और सूखा पड़ रहा है.
Plagues.
और ये प्लेग बीमारी फैल रही है.
So many political conditions of communalism and oppression.
और इस तरह से जो राजनीतिक स्थिति में भी इस तरह से कार्य चल रहे हैं.
Other nations are building big bombs.
और दूसरे देश बड़े बड़े बम बना रहे हैं.
What to speak of the sufferings of our own mind and anxieties, loneliness of the heart.
और फिर मन की चिंता और जो है हृदय की अकेलापन इसका क्या कहना.
Sometimes our friends, our children disappoint us.
कभी कभी हमारे मित्र या हमारे बालक हमको निराश कर देते हैं.
At any moment a catastrophe could come into our life.
किसी भी क्षण जो है दुनिया में हमारे ऊपर विपत्ति आ सकती है.
And yet we are trying to make happiness in a place of misery.
फिर भी हम इस दुखालय में जो है सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं.
It is like trying to stay dry while you're swimming in the ocean.
ये तो ऐसा है कि समुद्र में आप तैर रहे हैं और आप अपने शरीर को सूखा रखना चाहते हैं.
It's not possible.
ये असंभव है.
To be happy in a world of misery, it's not possible.
इस दुनिया में सुखी होना नामुमकिन है.
Maybe for a short time, some relief.
हो सकता है थोड़ी देर के लिए थोड़ी सांत्वना मिल जाए.
But the goal of life is to come to our original natural position.
जीवन का उद्देश्य है कि हमारे स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना.
We are not these bodies, we are not these minds, we are the eternal atma.
हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम नित्य आत्मा हैं.
Which is not subjected to birth or death.
वो जन्म और मृत्यु से प्रभावित नहीं होता.
And the perfection of life is to awaken our original natural consciousness.
और जीवन की पूर्णता इसी में है कि अपनी शुद्ध चेतना को जागृत करना.
And with love and great concern try to help others to awaken their original natural consciousness.
और प्रेम से दूसरों को भी उनकी मूल चेतना को जागृत करने में सहायता करना.
To be on a physical, mental and spiritual level the servant of all living beings is the greatest service to God.
भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हर एक जीवात्मा का सेवा करना यही भगवान की सेवा है.
So this was the only benediction that Sudama asked from Krishna.
और यही आशीर्वाद सुदामा ने कृष्ण से मांगा.
Let me eternally be your servant and let me eternally be the servant of all living beings.
मैं नित्य रूप से आपका सेवक बना रहूं और सारे जीवात्माओं का भी सेवक बना.
Without expectation of anything for myself.
और अपने आप के लिए किसी चीज की आशा नहीं रखूं.
And according to the Shastra, this platform of consciousness is the only real source of happiness.
और शास्त्र के अनुसार यही जो चेतना का स्तर है वही सच्चे सुख का स्रोत है.
मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा खोतिष्वपि महामुने. The Bhagavad says, out of so many thousands and millions of great souls who have attained mukti, and of thousands and millions of yogis who have attained mystic power, siddhis, it is very, very difficult to find one unalloyed pure devotee of Lord Narayan.
शास्त्र में बताया गया है कि कई मुक्त पुरुषों में, कई शुद्ध पुरुषों में भी जो भगवान का शुद्ध भक्त मिलना बहुत ही दुर्लभ है.
Only such a Narayana Parayana is really prasanatma or happy.
ऐसा ही नारायण परायण जो है वही प्रसन्न आत्मा रह सकता है.
Because he is the only one free of any selfish desire.
क्योंकि वही है जिसकी कोई स्वार्थ की अपनी इच्छा नहीं है.
सवाय पुंसंग भरो धारमो यथो भक्ति रढ़ोक्षचे अहित की आप्रति हताज जात्मा सुप्रसीदति. The supreme occupation for all humanity is that which awakens unalloyed, unmotivated, uninterrupted devotion to God.
सर्व मानवता के लिए परम धर्म वो है कि जो कि भगवान के लिए अहित की और अप्रतिहता भक्ति को जागृत करता है.
It is only that bhakti, selfless bhakti, that gives real pleasure to the soul.
ये ऐसी ही भक्ति जो कि निस्वार्थ भक्ति है वो आत्मा को आनंद प्रदान कर सकती है.
Through other actions we can give some pleasure to this body, to the senses and the mind, but the soul will find no satisfaction until it is selflessly engaged in the service of the Lord and all of his creation.
दूसरे चीजों से हम मन और शरीर को जो है आनंद दे सकते हैं, लेकिन आत्मा को जो है इसी तरह से जो है पूरी सृष्टि की सेवा, भगवान की सेवा से ही आनंद दे सकते हैं.
Because that is the true nature of our very hearts.
क्योंकि वो हमारे हृदय का सही स्वभाव है.
And to receive that is the greatest of all gifts.
और यह प्राप्त करना यही सबसे बड़ी भेंट है.
Krishna became so pleased with Sudama.
कृष्ण भगवान या सुदामा से इतने प्रसन्न हो गए.
That he told him, whatever you desire will be fulfilled.
भगवान बोले कि जो भी आप चाहेंगे वो पूरा हो जाएगा.
But while you're living in this world, anything you desire, you will receive.
जब तुम इस जीवन में रहते हुए जो भी तुम चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा.
You will have wealth. You will have family prosperity. You will have long duration of life, good health, and when you leave this body, you will return to my eternal abode.
तुम्हें धन, संपत्ति, अच्छी लंबी आयु, परिवार सब मिलेगा और इस जीवन के बाद तुम मेरे धाम वापस पहुंचोगे.
When one surrenders to Krishna, he is never the loser.
जब व्यक्ति कृष्ण की शरण में आता है तो वो कुछ खोता नहीं है.
One may ask, why did Krishna offer him so many material benedictions?
कोई ये प्रश्न पूछेगा कि भगवान ने उसको इतने भौतिक आशीर्वाद क्यों दिए?
Because a devotee who is not attached to any of these things will use them all for the welfare of others.
क्योंकि अगर भक्त कोई आसक्ति नहीं होगी तो ये सब चीजों का वो दूसरों के कल्याणार्थ उपयोग करेगा.
And for the glory of God.
और वो भगवान के यश के लिए उपयोग करेगा.
So therefore, they are entrusted with the best.
इसीलिए उन्हें सर्वोत्तम चीजें प्रदान की जाती है.
We must evaluate in our life what really is the most priceless goal to achieve.
हमें अपने जीवन में सोचना चाहिए कि सबसे ऊंची चीज क्या है प्राप्त करने लायक.
In this regard, I would like to tell you a story.
इस संबंध में हम एक कथा बताना चाहेंगे.
There was a great devotee. His name was Sanatan Goswami.
ऐसे एक महान भक्त थे, उनका नाम था सनातन गोस्वामी.
Sanatan Goswami was the chief minister of the king of Bengal, the Nawab Hussain Shah.
वे बंगाल के राजा नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे.
And he was a multi-billionaire.
और वो जो है करोड़पति अरबपति थे.
He had power, he had prestige, he had influence, he had beautiful palace, wonderful gardens, everything.
उनके पास शक्ति थी, उनके पास यश था, उनके पास पैसा था, उनके पास बगीचे थे, उनके पास महल थे, सब कुछ था.
His advice was so precious that he was controlling the king.
उनकी जो सलाह थी वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि वो राजा को भी वश में करते थे.
But when Krishna, who appears in this age of Kali, as Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, as the Yuga Avatar, he met Sanatan Goswami and told him, you should give up all of your worldly things and go to Vrindavan and worship Krishna.
उसके बाद जो कृष्ण जो कि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, उन्होंने उनसे कहा कि आप इन सब चीजों का त्याग कर दो और आप वृंदावन में चले जाओ.
So Sanatan Goswami He gave up his beautiful palatial home and he was sleeping on the ground under a different tree every night.
उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और वो हर रात्रि को अलग अलग पेड़ के नीचे विश्राम करते
And he also gave up all his fine foods and he became a beggar going house to house to collect some roti.
उन्होंने सब स्वादिष्ट भोजन त्याग कर दिया और वो घर घर जाकर जो है थोड़ी रोटी भिक्षा मांगते थे
And he gave up his fine, fine clothes, silks and jewelry to wear discarded cloth, one kopan only.
और उन्होंने जो है सब जो है अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण त्याग करके बस एक कौपिन धारण कर लिया
त्यक्त्वतूर नमशेष मंडलपति श्रेणेम सदा तुच्छवात But he was always absorbed in the highest ecstasy of the love of the gopis for Krishna.
परंतु वे जो है हमेशा सबसे ऊंचे गोपी प्रेम में मग्न रहते थे
He never considered that he lost anything.
उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैंने कुछ खो दिया है
It was like throwing away some broken glass to receive the rare precious diamond of true peace, true love in the form of pure bhakti.
वो तो ऐसा है कि मानो कांच के टुकड़ों को फेंककर भक्ति के सच्चे हीरे को स्वीकार करना
So this Sanatan Goswami, he was living on a hill called the Dashvaditya Hill, and there, under a tree, he was continuously chanting the holy names of Krishna.
वो जो है सब कुछ त्याग करके द्वादश आदित्य टीले के पास और वो बार बार हमेशा जो है कृष्ण नाम का जाप कर रहे थे
But not only that, but he used to go from village to village in that area, simply showing his kindness and love to everyone.
और यही नहीं वो एक गांव से दूसरे गांव जाते और पूरे गांव के सब लोगों को अपनी दया दिखलाते थे
On one level, he would solve every type of problem everyone would have.
और जो सब प्रकार की समस्या जो जिनके पास होती उसका वो हल कर देते थे
He would discuss with them their financial problems, their family quarrel problems, their health problems. He would show special concern for everyone and help them.
वो सब प्रकार की समस्या चाहे वो आर्थिक समस्या हो परिवार की समस्या हो जो तबियत की समस्या हो सबके लिए वो अपना अपना जो है सहायता करने का प्रयास करते हैं
But by the time he would finish discussing whatever subject, people simply wanted to love Krishna and serve Krishna by his association.
और जब तक वो समस्या का जो है बातचीत खत्म करते लोग जो है कृष्ण की सेवा करना चाहते और कृष्ण से प्रेम करना चाहते
In this way, he was the greatest welfare worker. He was serving the real needs of the soul of all.
इसी तरह से वो सबसे बड़े कल्याणकारी कार्य करने वाले थे क्योंकि वो आत्मा की आवश्यकता को पूर्ण कर रहे थे
Men, women and children, he was merciful to everyone.
वो सबके प्रति पुरुष स्त्री या बालकों सबके प्रति दयालु थे
So one day when he was sitting under a tree, sitting and chanting the holy names, a thief This particular person, he wasn't actually a thief. What happened is this person was worshipping Lord Shiva.
एक व्यक्ति उनसे मिलने आया जो कि वो शिवजी की आराधना करता था.
He was performing great, great tapasya in the service of Lord Shiva.
शिवजी के लिए बहुत बड़ी तपस्या करता था.
And when Shiva gave him darshan, he said, Lord Shankar, please, I want unlimited wealth and riches and power.
वो शिवजी से कहने लगा कि मुझे जो है अनंत संपत्ति और शक्ति चाहिए.
So Lord Shiva told this person that you want great, great wealth and power in this world?
Yes.
He said, well, living in Vrindavan on a little hill near the Jamuna is one great devotee named Sanatan Goswami. And he is in possession of a touchstone. And that touchstone is so wonderful that whatever it touches will turn into pure precious gold.
तो शिवजी ने उनको बताया कि वृंदावन में यमुना जी के तट के पास ये एक साधु रहते हैं और उनके पास एक पारस मणि है और जो भी चीज तो पारस मणि को स्पर्श करेंगे वो जो है सोना बन जाएगी
And the more gold you have, the more power, influence, prestige, everything comes along with it.
अगर आपके पास ज्यादा सोना होगा तो अपने आप संपत्ति होगी अपने आप प्रभाव होगा अपने आप आपका यश होगा सब कुछ मिल जाएगा
So he was very happy and he bowed down to Lord Shiva.
वो बड़े प्रसन्न हुए और शिव जी को प्रणाम किया.
But Lord Shiva's the greatest of all Vaishnavas.
शिव जी जो है सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं.
And he was a good friend of Sanatan Goswami.
और सनातन गोस्वामी के अच्छे मित्र हैं.
So he knew the power of Sanatan.
वो जानते थे सनातन गोस्वामी की क्या शक्ति है.
On one occasion, Sanatan Goswami was living near Manasaganga, near Govardhan Hill, at a place where there was very ancient Shivalingas. The name of those Shivalingas is Chakaleshwar Mahadev.
एक बार जो है सनातन गोस्वामी मानसगंगा के पास चकलेश्वर महादेव के जो मूर्ति के पास रह रहे थे.
And Sanatan was worshipping those Lord Shiva there as the greatest devotee of Krishna.
और वो वहां वो शिव जी की आराधना कर रहे थे एक भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में.
So the mosquitoes were so ferocious that all night, every night, they were eating Sanatan's body.
और वो जो वहां के मच्छर इतने भयानक थे कि वो सनातन गोस्वामी के शरीर को रोज काटते रहते थे.
So Sanatan, he would not kill the mosquitoes. He was thinking that I cannot do my bhajan. I don't mind getting eaten by mosquitoes, but I cannot do my bhajan constantly being eaten by mosquitoes.
सनातन गोस्वामी बोले कि मुझे वो काटे कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना भजन ठीक से नहीं कर पा रहा.
And he was also writing divine literatures for the benefit of all the world, and it became very difficult for him to do.
और वो सबके कल्याणार्थ दिव्य शास्त्र लिख रहे थे और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया मच्छरों के कारण.
So he decided that I will leave this place.
तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस स्थान को त्याग दूंगा.
And when Lord Shiva found out that Sanatan Goswami was going to leave, he became very concerned.
जब शिवजी को पता चला कि सनातन गोस्वामी जा रहे हैं तो वो बड़े विचलित हो गए.
And Lord Shiva went to the predominating deity of all insect life.
तो सब प्रकार के जंतुओं की जो देवता होता है उसके पास शिवजी गए.
And he told them, ordered him, get all these mosquitoes out.
और उनको आज्ञा दी कि सब मच्छरों को यहाँ से निकाल दो.
Because I cannot live without Sanatan's association.
क्योंकि मैं सनातन गोस्वामी के संग के बिना रह नहीं सकता.
So as Sanatan was about to leave, Lord Shiva appeared in the form of a Brahmin and said, please, just stay one more night. No more mosquitoes will bother you.
तो सनातन गोस्वामी जाने वाले थे और शिवजी ने बताया एक ब्राह्मण के रूप में आकर कि एक रात्रि और रहिए, अब कोई मच्छर आपको तंग नहीं करेंगे.
So in this way, they were very dear friends.
इस तरह दोनों जो है बहुत निकट के मित्र थे.
So he sent this devotee of Shiva, he sent him, you go, Sanatan has a touchstone, all your material ambitions will be fulfilled.
तो उन्होंने उसे भेजा और कहा कि आप जाओ सनातन गोस्वामी के पास, उनके पास पारस मणि है और तुम्हारी सारी भौतिक अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी.
So this man approached Sanatan and said, my dear sir, I have been told that you have a touchstone. I want this touchstone.
तो वो बोले सनातन जी, मैंने सुना है कि आपके पास ये पारस मणि है और मैं ये चाहता हूँ.
He said, yes, you can have the touchstone.
बोले हाँ आप ले लीजिए.
It's over there in that pile of garbage.
बोले वहां आप चले जाइए जहां कचरे के डिब्बे में मिल जाएगा आपको.
So he went over and he started going through all the garbage, and the bottom of the pile, there was the touchstone.
और उन्होंने पूरा जो है डब्बा खाली किया और देखा सबसे नीचे वो पारस मणि उनको मिला.
He became very happy.
वो बड़े खुश हो गए.
He started creating incredible amounts of wealth.
और उन्होंने जो है बहुत सारी संपत्ति बनाना शुरू कर दिया.
But you know, the more you have, the more you want.
लेकिन आप जानते हैं कि जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा हमारी इच्छा बढ़ जाती है.
This is the law of nature.
ये प्रकृति का नियम है.
The more you have, the more you become greedy for more and more and more.
जितना आपके पास होता है उतना ही आप लोभ करते हैं और 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 ज्यादा प्राप्त करने के लिए.
You never see a rich man who's just satisfied.
कभी आप देखेंगे नहीं कि कोई अमीर व्यक्ति पूर्णतया संतुष्ट हो.
He's always trying to conquer his competitors so he can get more and more.
वो अपने प्रतिद्वंदियों से जो है और ज्यादा जो है संघर्ष करता रहता है जिससे ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करे.
Wealth is like an intoxication.
जो संपत्ति है वो नशे के समान है.
Even if you have so much, if somebody else has more, you cannot tolerate it.
चाहे आपके पास कितना भी हो अगर किसी के पास उससे ज्यादा हो जाता है तो आप सहन नहीं कर पाते.
So he was thinking that why Sanatan kept this touchstone, which is fulfilling all my desires, in the bottom of a pile of garbage.
वो सोचने लगे कि सनातन ने ये ऐसे मूल्यवान चीज पारसमणि ये सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं उसको कचरे के नीचे बिल्कुल क्यों फेंक दिया?
He must have something better than this.
जरूर उसके पास इससे भी कोई अच्छी चीज होगी.
And if he has something better than mine, I want that.
अगर उसके पास मेरे से अच्छी कोई चीज है तो मुझे वो मिलनी चाहिए.
I will not settle for anything less than best.
मुझे सर्वोत्तम से कोई चीज कम नहीं चाहिए.
So he returned to Vrindavan. And he said, Sanatanji, you must have something more valuable than that touchstone. Otherwise, why was it in garbage?
तो सनातन गोस्वामी से बोले, जरूर आपसे इससे अच्छी कोई चीज है नहीं तो इसको क्यों आपने कचरे में फेंक दिया है?
And Sanatan said, yes, I have something hundreds and millions of times better than that useless touchstone.
तो उन्होंने बताया कि मेरे पास इससे कई गुना ज्यादा हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान चीज है.
I must have it. Please give me that.
तो वो बोला कृपया मेरे को वो दीजिए.
Sanatan said, yes, I will give it to you. But first, you take your touchstone and you throw it in the river Jamuna.
बोले मैं वो दूंगा लेकिन पहले ये पारसमणि आपके हाथ में है उसको यमुना नदी में फेंक दो.
You have to have faith in me. Throw it in the Jamuna.
मेरे पर विश्वास करो और यमुना जी में फेंक दो.
I give you my word. I will give you something far greater and more valuable.
मैं वचन देता हूं कि आपको इससे बहुत मूल्यवान चीज प्रदान करूंगा.
What he was longing and yearning to achieve his whole life, he had it in his hands. And with great difficulty, he threw it in Jamuna.
जिसके लिए वो पूर्ण जीवन भर जो है प्रयास कर रहे थे प्राप्त करने के लिए उनके हाथों में था और उसको उन्होंने यमुना जी में फेंक दिया.
And Sanatan Goswami smiled.
और सनातन गोस्वामी मुस्कुराने लगे.
Said, now I will give you the supreme, most great touchstone in all of the creation.
और बोले कि अभी पूरी सृष्टि में जो सबसे बड़ा जो पारसमणि है वो मैं आपको देने जा रहा हूं.
Because that touchstone that you had can only give you the type of riches which are ultimately spoiled by death.
क्योंकि जो पहला जो पारसमणि आपके पास था वो ऐसी संपत्ति दे सकता है जो मृत्यु के समय नष्ट हो जाती है.
In the Bible, Lord Jesus Christ said, "Don't make your riches in this world, but make your riches in the treasure of God, in the kingdom of God."
बाइबल में जीसस क्राइस्ट बताते हैं कि अपने संपत्ति को इस दुनिया में मत बनाइए लेकिन भगवान के धाम में बनाइए.
Because the treasure of this world is subjected to be stolen by thieves, eaten by moths, and corroded by rust.
क्योंकि यहाँ की संपत्ति है उसको चोर ले जाएंगे या जो है कीड़े खा जाएंगे या उसको जंग लग जाएगी.
And it can never satisfy your soul's desires.
और वो कभी भी आत्मा की इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर सकते.
The greatest treasure is not artha kama dama moksha, but prema pumartha mahan, the treasure of love of God.
सच्चा जो संपत्ति है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है लेकिन वो भगवत प्रेम है.
Because pure unalloyed bhakti can completely awaken the unlimited bliss of our soul.
क्योंकि शुद्ध भक्ति जो है हमारे आत्मा की जो प्रेम है जो आनंद है उसको जागृत कर सकती है.
It can satisfy the longing and yearning of the heart for real love by finding the ultimate love in Krishna.
और हम ये प्राप्त कर सकते हैं जब अपना पूर्ण प्रेम जो है कृष्ण में पाते हैं.
And I will give you that touchstone that will awaken pure love of God within your heart, the greatest of all wealth.
और मैं आपको वो पारसमणि दूंगा जिससे आपके हृदय में शुद्ध प्रेम पैदा हो जाएगा.
And by Sanatan's association, this man became so humble, with so much faith, that with folded palms he said, Sanatan, please. And Sanatan said, now you raise your arms.
Sanatan Goswami ne bola unko ki aap haath upar kariye, sab log haath upar kariye.
And you take the pure and perfect names of God.
Aap Bhagwan ke purna naam ka gaan kariye.
Because this mantra will fulfill all of your soul's desires.
Kyunki ye mantra आत्मा की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देगा.
And give you the ultimate treasure, unalloyed bhakti.
और ये जो है शुद्ध भक्ति की संपत्ति को प्रदान कर देगा.
Now everyone chant very loudly.
अब सब लोग बहुत जोर से बोलना,
हरे कृष्णा,
कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे,
हरे कृष्णा,
कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे,
हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरि नाम संकीर्तन की
जय.
The chanting of the name of Krishna is the prime benediction for all humanity.
जो कृष्ण का नाम संकीर्तन है वो मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान है.
Because Krishna is none different than his name.
क्योंकि कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है.
Krishna possesses all opulences.
कृष्ण में सारे ऐश्वर्य हैं.
Krishna possesses all beauty, all knowledge, all strength, all wealth, all fame, and all renunciation.
कृष्ण में सारे छह ऐश्वर्य हैं, सुंदरता, ज्ञान, बल, वैराग्य और यश.
Therefore, his name is Krishna, which means the all-attractive force which completely satisfies the desires of every soul.
इसलिए उनका नाम कृष्ण है, इसका मतलब सर्व आकर्षक, जो कि सब इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है.
And all of the power and glory of God is incarnated within the beautiful sound of his name.
और भगवान के सारे शक्ति जो है उनके पवित्र नाम के सुंदर गान में आ जाते हैं.
So Krishna has explained here in the Bhagavad Gita that he envies no one. He is not partial to anyone. He is equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him.
यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, सबके प्रति समान भावना रहता हूँ, लेकिन जो मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, वो मेरे में है और मेरा मित्र है.
So we have the choice. Do we want to be like the washerman or do we want to be like Sudama?
हमारे पास ये चयन करना है, चाहे तो हम धोबी की तरह बन जाएं या हम सुदामा की तरह बन जाएं.
Krishna is giving everyone the choice to perfect their lives.
ये चयन करने का अवसर सबको दे रहे हैं कि अपने जीवन को पूर्ण करने का.
Will we accept it or reject it?
हम उसे स्वीकार करें या ठुकरा दें.
Two things are most important.
दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं.
One is we must regularly associate with saintly people.
पहला ये है कि हमें नियम पूर्वक साधु संग करना चाहिए.
To regularly come and hear and chant the glories of the Lord in the association of sincere devotees.
नियम पूर्वक भक्तों के संग में आकर भगवान का श्रवण कीर्तन करना.
This is essential.
ये आवश्यक है.
And in our own homes, in our own life, we should live a very pure life.
और अपने खुद के जीवन में, अपने खुद के जो घर में, बहुत पवित्र जीवन बिताना चाहिए.
Whatever work we do, whatever services we perform, we should do it in a consciousness of devotion to God.
और जो भी हम कार्य करते हैं वो हमें जो है कृष्ण भावना में करना चाहिए.
And that comes naturally when we regularly chant his holy names.
और ये स्वाभाविक हो जाता है जब हम नियम पूर्वक उनका नाम जाप कीर्तन करते हैं.
The yuga dharma of this age of Kali is the congregational chanting of the holy names.
इस कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन.
When we come together like tonight to loudly chant and dance in the glory of God, not only is our own soul uplifted and benefited, but the souls of all others by this vibration are purified.
जब हम इस तरह से एकत्र होते हैं कीर्तन करने के लिए और नृत्य करने के लिए, न केवल हमारी आत्मा का उत्थान होता है बल्कि सब लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता है.
So the opportunity is for everyone.
इसलिए अवसर हर एक के लिए है.
Let us understand the true value of the treasure that God is giving us and accept it with a grateful heart.
हमें इसका जो है सही मूल्य समझना चाहिए और एक कृतज्ञ हृदय से इसको स्वीकार करना चाहिए.
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे,
हरि बोल. Now we'd like to teach you how to perform kirtan as the great Yuga Avatar Sri Chaitanya Mahaprabhu has taught us.
Abhi hum sikhayenge ki kaise kirtan karna hai jaise Chaitanya Mahaprabhu ne sikhlaya hai.
As I am chanting the sweet name of Sri Krishna, fold your palms like this.
Jab Maharaj gayenge to is mudra mein aise haath ko jodiye. Sab log haath jod ke dikhaiye aise.
Welcoming the name of Krishna into your ears, into your mind, and into your very heart.
Krishna ke naam ko apne kaan se, hriday se aur man se swagat karna.
And as you are chanting, raise your arms like this.
Jab aap gayenge uske baad to aise haath ko upar uthaiye. Sab uthaiye dikhaiye.
Making your life an offering.
अपने पूरे जीवन को भगवान के अर्पण करते हैं.
Unto the lotus feet of the holy name.
भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों में अर्पण करते हैं.
As Mother Draupadi raised her arms and cried out Krishna's names, and Krishna fulfilled her all desires, we should chant in this spirit.
जैसे द्रौपदी ने जो है भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण किया.
Everyone please stand.
अभी सब लोग कृपया खड़े हो जाइएगा.
Please know that what we are about to experience is not a form of dancing for the purpose of entertainment.
हमें ये समझना चाहिए कि ये जो हम नृत्य करते हैं ये कोई एंटरटेनमेंट तमाशा नहीं है ऐसे.
It is the most sublime and highly recommended form of meditation in all of the scriptures.
और ये जो है वास्तव में ये भगवान को संतुष्ट करने का एक बहुत ही दिव्य तरीका है.
The Bhagavad says,
सब लोग शांति से सुनिए.
जग्याय संकीर्णतनाय जाय, that those who have sumedasa कृष्णवाणम त्विसा कृष्णम संगोपांग शपारशडम, those who have good intelligence in the age of Kali, they will perfect their lives through this congregational chanting of the holy names.
भागवत में बताया गया है कि जिनके पास अच्छी बुद्धि होगी वो अपना जीवन सफल करेंगे इस तरह से संकीर्तन करते हुए.
We want to keep nice harmony together, so we should move our feet just like Sri Kardamaji. First to the right and then to the left.
तो यह सब एक साथ करना चाहिए. जैसे हम दाईं ओर जाते हैं ऐसे या बाईं ओर